ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्रह्मण हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। सारे श्रोतागणों का, भक्तों का स्वागत है। आज का भागवत क्लास छठा स्कंद अध्याय 14 श्लोक नंबर 56 सही है ना। और इस अध्याय का शीर्षक है राजा चित्रकेतु की परमेश्वर से भेंट। तम तात नार्हसि च माम कृपणाम अनाथाम। तम तात नार्हसि च माम कृपणाम अनाथाम। त्यक्तुम विचक्ष्व पितरं तव शोक तप्तम्। अञ्जस्तरेम भवता प्रज दुस्तरं याद। द्वान्तं न जाहि अकरुणेन यमेन दूरम्। त्वं तुम्हें तात हे पुत्र ना नहीं अर्हसि चाहिए च तथा माम मुझे कृपणाम अत्यंत दीन की अत्यंत दीन को अनाथाम रक्षक विहीन अनाथ को त्यक्तुम छोड़ना विचिक्ष्वा देखो पितरम पिता को तवा तुम्हारे शोक तप्तम शोक संतप्त अंजह सरलता पूर्वक तरेमा हम पर कर सकते हो हम पार कर सकते हैं भवता तुम्हारे द्वारा अप्रज दुस्तरम बिना पुत्र के पार करना दुष्कर यात जो ध्वान्तम अंधकार का राज्य न याही दूर मत जाओ अकरुणेन निर्दय क्रूर यमेन यमराज के साथ दूरम दूर। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। प्यारे बेटे मैं असहाय एवं अत्यधिक शोकाकुल हूं तुम्हें मेरा साथ नहीं छोड़ना चाहिए तुम अपने शोकाकुल पिता की ओर तो देखो हम दोनों असहाय हैं क्योंकि पुत्र के बिना हमें घोर नरक में यातनाएं सहनी पड़ेंगी तुम्ही एकमात्र सहारा हो जिसके बल पर हम इस अंधकार में प्रदेश से उबर सकते हैं। अतः मेरी प्रार्थना है कि तुम निर्दयी यमराज के साथ और आगे ना जाओ। तात्पर्य, वैदिक आदेश अनुसार मनुष्य को पत्नी स्वीकार करनी चाहिए जिससे वह पुत्र उत्पन्न करके अपने को यमराज के चंगुल से छुड़ा सके। जब तक पितरों को पिंडदान करने के लिए पुत्र नहीं होता तब तक यमराज के लोक में यातना सहनी पड़ती है। राजा चित्रकेतु यह सोचकर अत्यंत शोकाकुल था कि उनका पुत्र यमराज के साथ चला जा रहा है, अतः उन्हें पुनः यातना सहनी होगी। ये सूक्ष्म नियम कर्मियों पर लागू होता है। यदि मनुष्य भक्त बन जाता है तो कर्म के नियम उस पर लागू नहीं होता। हमसे कहा गया कि इस अध्याय के आगे भी पढ़ लें क्योंकि और तात्पर्य है नहीं, तो इस अध्याय को समाप्त कर दें। प्यारे बेटे, तुम बहुत देर से सो रहे हो, अब उठो, अब उठ जाओ, तुम्हारे संगी तुम्हें खेलने के लिए बुला रहे हैं। क्या है ये, कुछ गड़बड़ है। चूंकि तुम्हें बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी होगी, इसलिए उठो, मेरे स्तनों से दूध पियो और हमारा शोक दूर करो। प्रिय पुत्र, मैं सचमुच अभागिनी हूं क्योंकि मैं अब तुम्हारे मुख पर मंद हंसी नहीं देख सकती हूं। तुमने सदा के लिए आंख बंद कर ली है, अतः मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूं कि तुम इस लोक से दूसरे लोक में ले जाए गए हो जहां से तुम लौटकर नहीं पाओगे। बेटे, मैं तुम्हारी मनमोहक वाणी अब और आगे नहीं सुन सकती हूं। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार अपने प्रिय पुत्र के लिए विलाप करती हुई अपनी पत्नी के साथ ही राजा चित्रकेतु भी अत्यंत शोक से संतप्त होकर फूट फूट कर रोने लगा। राजा तथा रानी के विलाप करते देखकर उनके समस्त अनुयायी स्त्री तथा पुरुष भी रोने लगे। इस आकस्मिक घटना से राज्यभर के सभी नागरिक अचेत से हो गए। जब ऋषि अंगिरा ने समझ लिया कि राजा शोक समुद्र में मृत प्राय हो चुका है, तब वे नारद ऋषि के साथ वहां गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद के अंतर्गत राजा चित्रकेतु का शोक नामक 14 अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुई। मुखम करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभा जी बताते हैं कि पुत्रार्थ क्रियते भार्या पुत्र पिंड प्रयोजनम पुन्नामो नरकाद यस्मात्रायते इति पुत्रः। यहां पर ये जो शास्त्र की वाणी है प्रभुपाद ने बहुत सरल भाषा में प्रस्तुत किए हैं। वैदिक अनुसार आदेश अनुसार मनुष्य को पत्नी स्वीकार करनी चाहिए जिससे वह पुत्र उत्पन्न करके अपने को यमराज के चंगुल से छुड़ा सके, है ना। वास्तव में यहां पर एक ही लाइन में प्रभुपाद जी वेदों का जो आदेश है यहां पर प्रस्तुत करते हैं। कभी लोग हमने देखा है विशेष करके भारत में सोचते प्रभुपाद जी के ग्रंथ उतना उसमें उतना विद्वत्ता नहीं होती, उसमें उतना पांडित्य नहीं होता। किंतु जब हम पुराणों का अध्ययन कर रहे थे तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वास्तव में प्रभुपाद जी के जितने भी तात्पर्य है कहीं ना कहीं शास्त्रों के कोट्स मिलेंगे। हमने देखा है जो लोग कहते हैं इसमें पांडित्य नहीं है वो स्वयं पंडित नहीं होंगे, स्वयं शास्त्र पढ़े नहीं होंगे। यहां तक के जो तर्क प्रभुपाद देते हैं कई जगह पर कि यदि हम ये मान ले कि ब्रह्म भगवान जब माया से दूषित होकर पृथ्वी पर आता है तो उसको ईश्वर कहते हैं, है ना। एक तर्क है, ये मायावादियों का तर्क है। ये वास्तव में ये तर्क ब्रह्म वैवर्त पुराण से निकाला है, तो वो भी हर प्रकार की जो वाणी हमने देखा है कहीं ना कहीं पुराणों में प्रभुपाद ने प्रभुपाद जी की जो वाणी कहीं ना कहीं पुराणों में मिलता है। तो हम जब इसका अध्ययन कर रहे थे तो हम ये सोचे भाई वास्तव में प्रभुपाद जी को लेकर हम चले तो हमेशा हम सुरक्षित रहेंगे, हम कभी भटकेंगे नहीं। ये हमारी अपनी अध्ययन का फल है। यहां पर प्रभुपाद जी कहते हैं ये सूक्ष्म नियम कर्मियों पर लागू होता है, यदि मनुष्य भक्त बन जाता है तो कर्म के नियम से कर्म के नियम उस पर लागू नहीं होता। और यह भी एक बहुत विचार विमर्श की बात है क्योंकि भक्त कभी इससे कभी चिढ़ जाते हैं, यदि हम भक्त हैं तो हमारे ऊपर कर्म लागू नहीं होता है, क्या हम रोगी नहीं होते, सर्दी नहीं लगती, क्या हमारे साथ एक्सीडेंट नहीं होता है? ये सब कर्म का परिणाम होगा ना। तो आचार्य कैसे कह रहे हैं यहां पर कर्म लागू नहीं होता, है ना? आपके मन में कभी ये शंका उठी कि नहीं? उठा होगा, जो विवेकी होंगे वो सोच रहे हैं ये कैसे हो सकता है। तो इस पर हम थोड़ा व्याख्या करें। प्रकृते क्रियमानानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कृतम् इति मन्यते। गीता का ये श्लोक यह हमें बताता है कि वास्तव में जितने भी कर्म है इस संसार में सब प्रकृति द्वारा त्रिगुण द्वारा किए जाते हैं, किंतु अहंकारवश जो आत्मा है, बंध जीव है यहां पे, वो ये सोच बैठते हैं कि मैं ही करता हूं। तो कर्म वास्तव में संसार में जो जितने भी कर्म है त्रिगुणात्मक कर्म है, तीन गुण द्वारा किए जाते हैं। जीव इच्छा करता है और प्रकृति वो कर्मों को कर बैठती है, उनकी इच्छाओं को पूरा कर देती है। और कर्म भी तीन प्रकार के हैं, सात्विक कर्म, सात्विक कर्म भी एक प्रकार का बंधन है। सात्विक कर्म हमें पांडित्य से बांधता है कि हमें लग जाए हाँ मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, देखो आज मैं व्यास पर बैठा हूं और सभी मेरे वाणी सुन रहे हैं, हाँ आज मैं प्रगति कर रहा हूं। भाई प्रगति की सुर, अभिमान की प्रगति कर रहे हो या वास्तव में शास्त्र की व्याख्या कर रहे हो? सत्वगुण हमें बांध देता है पांडित्य में, और जो आनंद मिलता है वास्तव में सत्वगुण का वो शास्त्रीय संबंधित आनंद होता है, किंतु है तो बंधन ही। रजोगुण हमें भोग कर्म की ओर ले जाता है, भोग कर्म से बांध देता है। एक है पांडित्यानंद और दूसरा है भोग आनंद कि संसार में हमें बड़ी गाड़ी चाहिए। वो क्या है कि आजकल है ना वो उस गाड़ी का नाम क्या है, वो मोटा सा मोटर बाइक का नहीं नहीं वो सभी मोटा है, वो रॉयल एनफील्ड। हमें रॉयल एनफील्ड चाहिए। वास्तव में एनफील्ड को जो शब्द आप देखेंगे इंग्लिश में रॉयल एनवी, राजकीय ईर्षा कि हम बैठे राजा जैसे हैं। तो ये भोग के लक्षण है, भोगानंद के लक्षण है। और तमगुणी वो हमें जघन्य कर्म से बांधता है, वो कर बैठेंगे जो नहीं करना चाहिए, है ना। किंतु यहां पर आचार्य ने कहा है कि भक्त इन कर्मों से प्रभावित नहीं होता, अर्थात भक्त त्रिगुण से परे होगा, होना ही चाहिए। यदि आप तीन गुण से परे नहीं है, त्रिगुणातीत नहीं है, तो कोई ना कोई कर्म आपको दूषित करेगा ही, प्रभाव तो पड़ेगा ही। और ये बात गीता में भी है कि भक्ति वास्तव में तीन गुणों से परे है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षती समह सर्वेशु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। वास्तव में भक्त की परिभाषा यही है कि समह सर्वेशु भूतेषु, सबको एक समान देखना। आप सबको एक समान देखते हो भाई? जब हमारी बात आती तो सबको एक समान देखना चाहिए, किंतु जब हमें कुछ लाभ लेना है संसार में तो समान क्यों देखें? न सोचती न आकांक्षती, कोई चिंता नहीं, कोई सोच नहीं है, और कोई इच्छा भी नहीं, कोई कोई आकांक्षा भी नहीं है। समा सर्वेशु भूतेषु तब भक्ति प्राप्त होता है, मद भक्तिम लभते पराम। उससे पहले जो हम भक्ति करते हैं वास्तव में भक्ति है नहीं, तीन गुण वाली भक्ति वो वास्तव में भक्ति नहीं, उसको कर्मयोग कहा गया है। तो वास्तव में यदि भक्त ब्रह्मभूत बनता है तब उसके ऊपर कर्म प्रभावित नहीं कर सकता, कर्म उसको प्रभावित नहीं कर सकता, तभी भक्ति शुरू होता। अब आप कहेंगे भाई तब क्या किया जाए, अभी तो मैं त्रिगुण से मुक्त नहीं हूं, तो मेरा क्या गति होगी, हमारी क्या गति होगी? तो वहां पर प्रभुपाद जी भी इस पर उत्तर देते हैं, तब तक जब तक हम मुक्त नहीं हो जाते तब क्या करना चाहिए? तत्तेनुकंपां सुसमिक्षमानो भुंजानेवात्मा कृतं विपाकं हृदवाग्वपुरभिर् विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाक। ये भागवत का श्लोक है और यहां पर बताया गया है कि जब तक हम मुक्त नहीं होते तब तक कर्म का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। अजब पिछले जन्मों के कर्म और इस जन्म के बीते हुए सालों के कर्म हमारे ऊपर पड़ता है तो क्या हमें ईश्वर को दोषी ठहराना चाहिए जैसे यहां पर कृतद्युति कर रही है? नहीं। ये बताता है भुंजाने वात्मा कृतम विपाकम, ये जानना चाहिए कि हमने जो पिछले पूर्व कर्म किए हैं उसका फल उसका परिणाम है ये। और क्या करना चाहिए? हृदवाग वपुरभिर विदधन नमस्ते, पूर्ण हृदय से वाणी से और अपने शरीर से उनको प्रणाम करना चाहिए, प्रभु को प्रणाम करना चाहिए। तो जो ऐसे जीता है जीवे तो यो मुक्ति पदे सदाया भाग, मुक्ति उसका दाया भाग बन जाता है, इनहेरिटेंस बन जाता है, वो वास्तव में गोलोक की प्राप्ति उसकी उसका टिकट बन चुका है, उसका टिकट बन जाता है जो ऐसे जीता है। हमको चाहिए सदैव दोष अपने अंदर ढूंढे, भगवान को ऊपर कोई दोष आरोपण कभी करना नहीं चाहिए, नहीं तो हम स्वयं दूषित हो जाते हैं। रामचरितमानस की जो बात तो सभी जानते होंगे, हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करे तरकई बढ़ा वही शाखा, है ना। हालांकि हम लोग रामचरितमानस से पढ़ते नहीं यहां पे, किंतु कहीं कहीं ऐसे से सुंदर सुंदर वाणी है कि भाई आप भगवान से तर्क करेंगे तो केवल तर्क की शाखा बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, उससे कुछ लाभ नहीं मिलेगा। को करी तर्क बढ़ा विशाखा, ईश्वर से तर्क नहीं करना चाहिए। हाँ, यदि वो तर्क करना चाहे तो बात दूसरी है, किंतु हमें उनको दोषी कभी ठहराना नहीं चाहिए। क्योंकि वास्तव में हम जब किसी को दोषी ठहराते हैं, ईश्वर को दोषी ठहराते हैं, तभी हम इस संसार में बंधते हैं। जब कोई संसार में आता है तो ऐसे नहीं कि आने से ही वो बंध जाता है, जब तक वो अपना विवेक नहीं त्यागता और भावुकता प्रकट नहीं होता उसके अंदर तब तक वो बंधता नहीं है। जो बंधन है वो भावुकता का ही बंधन है। प्रभा जी यहां पर उदाहरण दिए, एक राजा यदि कहीं कारागार में जाता है कारागृह में, तो ऐसा नहीं कि वो भी एक उसमें बंध जाता है, नहीं, केवल जा रहा है, निरीक्षण कर रहा है, देख रहा है, इसका तात्पर्य नहीं कि वो भी एक अपराधी बन गया है, उसको बांध करके वहां बैठा देंगे, ऐसे नहीं है। जीव जब प्रकृति में प्रवेश करता है तो तुरंत नहीं बंध जाता, जब यहां पर आकर वो निरीक्षण करे, केवल देखे और विवेक अपना न खो बैठे तब तक वो नहीं बंधता। हाँ, जब उसके अंदर वासना जागती है, भाई इसका भोग करना, ये मुझे चाहिए, तो उसके अंदर रॉयल एनफील्ड आने लगता है, ये हो ही जाता है, तब आसक्ति बढ़ती है और उसको चाहिए कई प्रकार के धन संग्रहित करना, चोरी से कभी, डाका से कभी, GST को भी ना दिखा करके भी ऐसे ऐसे वो ले लेता है ना। जीव ऐसे बंध जाता है संसार में, किंतु यदि वो अपना विवेक ना खो बैठे तो किसी प्रकार के बंधन नहीं है। तो वास्तव में यदि हम अपना भावनाएं संसार के प्रति इसको बंद कर सकते हैं तो फिर बंधन ही क्या, किंतु ये संभव नहीं होता। भावनाएं तो होती ही रहती हैं, किसी के अंदर कुछ ज्यादातर भावनाएं होती है, किसी के अंदर कुछ कम होती है। और यहां पर यह भी है कि भाई केवल सुनने से और जानने से कोई मुक्त तो नहीं होता, भाई समझ लिया कि अच्छा ये भावना ही है जो हमें संसार से बांधता है, ठीक है समझ गया, तो क्या समझने से आप मुक्त हो जाएंगे? ये प्रश्न देवहूति ने कपिल से पूछी कि भाई केवल जानने से ऐसे तो नहीं होता कि हम मुक्त हो जाते हैं, इसके पीछे रहस्य क्या है? क्योंकि जानने के बाद भी जीव अपराध कर बैठता है, क्यों? ये प्रश्न गीता में अर्जुन ने भगवान से पूछा था कि कारण क्या है कि ना चाहते हुए भी जीव अपराध कर बैठता है। भगवान ने क्या बोला उस पर? कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विद्धि एनम इह वैरिणम। इसको यदि हम मनोवृत्ति की दृष्टि से देखें, इस पर कुछ प्रकाश डाले, तो वास्तव में कठिनाई क्या है? कठिनाई यह है कर्म से छुटकारा पाने की कठिनाई नहीं है, छुटकारा तो पा लिया। कहते हैं महात्म्य में कि कार्तिक में दीप दान करने से, गिरिराज जी की परिक्रमा करने से, तुलसी को जल डालने से अब तो प्रतिदिन हम लोग करते हैं, और उनका चरणों में उनके जड़ में स्पर्श करने से सारे पाप मिट जाते हैं, तो पाप तो मिट गया, किंतु ऐसे लक्षण तो दिखाई नहीं देते कि हम मुक्त हो गए। क्या कारण है? आदतें नहीं छूटती, ये सबसे बड़ी समस्या है। जो हम जन्म जन्मांतर कर्म करते आए हैं उसका प्रभाव यह हो गया है कि हमारे अंदर आदतें आ गई हैं, संस्कार आ गए हैं। तो कर्म नष्ट होने के बावजूद भी वो संस्कार, वो आदतें हमारे अंदर रह जाती है। कोई मुक्त हो गया है किंतु आदत से वो फिर वही उल्टा सीधा काम करने लगता है। अब वास्तव में आदत जो है ये भावनाओं के ऊपर चलता है। तभी तो लोग कहते भाई आदत से मजबूर हूं, सब कुछ समझता हूं, सब कुछ जानता हूं, किंतु कर नहीं पाता हूं, आदत से मजबूर। तो वास्तव में हमें जो जीतना है वो आदतें जीतना है, किंतु आदत जीतने की क्षमता जीव में नहीं हो पाती। तभी तो ईश्वर का होना आवश्यक होता है। तो वास्तव में हमें जो संसार में बांधता है हमारे आदतें ही है। सूक्ष्म आदत होगा, या तो कभी कभी ऐसे होता है कि मान लो बालक हो तो वो आदत अभी प्रकाशित नहीं होता, अभी दिखाई नहीं देता है, किंतु जैसे वो यौवन हुआ तो जो आदतें थी पिछले जन्म की या जो इच्छाएं थी वो प्रकाशित होने लगता है। कभी कभी हमें पहले वो आदत नहीं दिखाई देता। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण वास्तव में जीव का जो कर्म का भुगतान है उससे उनको मुक्ति नहीं देता, क्योंकि आदत तब छूटती है जब हमें एक परीक्षाएं मिले, तब परीक्षा से हमें शिक्षा मिलेगी, हमें अनुभूतियां मिलेंगी, उससे आदत छूटती है। यही कारण है कि हरि भी विवश है कि जीव को उनका कर्म दो, किंतु प्रभा जी कहते हैं कि जब हरि हमें परीक्षाएं देती है तो उसको कर्म नहीं कहते, कृष्ण कर्म। जब माता जी देती है, दुर्गा जी देती है, हाँ तो उसको कर्म कहते हैं, किंतु जब हम भगवान में शरणागत हो जाते हैं तो जो परीक्षाएं मिलती है वो शिक्षा, जिससे हम लोग शिक्षा पाते हैं, वो भगवान का दिया हुआ है। यही कारण है कि भक्त के ऊपर भी अनेक प्रकार के दुख संताप आदि आदि आते ही रहते हैं, किंतु हमें जानना चाहिए कि इसे हमें कुछ सीखना है, तभी तो हरि दे रहे हैं, तभी तो कृष्ण दे रहे हैं। और यदि नहीं सीखे तो वो परीक्षा दोबारा आएगी, और यदि सीख गए तो जो बाकी कर्म है जिसके आधार पर वो परीक्षा भगवान ने बनाया है उसको वो लुप्त कर देते हैं। कर्माणि निर्धति किंतु च भक्ति भाजाम, इसका तात्पर्य है। तो सबसे कठिन है अपने आदतों का परित्याग, और यह सबसे कठिन सबसे दृढ़ बंधन भी है। यहां पर चित्रकेतु और उनकी पत्नी कृतिद्युति दोनों भावनाओं से बंध गए थे और अपने विवेक को खो बैठे। अब देखो इसमें कोई दोष तो है नहीं कि कोई व्यक्ति अपने पुत्रों से स्नेह करता हो, ये तो स्वाभाविक है, प्राकृतिक है, किंतु जब बच्चों में परिवार में स्नेह भगवान के स्नेह से अधिक हो जाए तब उसको मोह कहते हैं। भक्तों के अंदर भी परस्पर स्नेह होना चाहिए, मित्रता होनी चाहिए, सुहृदता होनी चाहिए, किंतु यदि वो मित्रता या वो स्नेह हमें भगवान की ओर से ले जाए, दूसरी ओर ले जाए, तो उसको मोह कहते हैं। यहां पर प्रभु जी कह रहे कि भक्त यमलोक नहीं जाते, उनको पर ये लागू नहीं होता है। एक दूसरा कारण यह भी है, यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मद्याजिनोऽपि माम। यहां पर जो जिस प्रकार की पूजा करता है, जिस प्रकार का व्रत धारण करता है, जैसे देव व्रत कोई करता है तो वो देवलोक में जाएगा, पितरों की पूजा करता है तो पितृलोक में जाएगा, भूतों की पूजा करता है तो भूतों के साथ नाचेगा, है ना। और यान्ति मद याजिनोऽपि माम, जो हमारी उपासना करता है हरि कह रहे हैं तो मेरे साथ जिएगा। तो आप सब हैं, ये आशा तो है कि कोई भूतों की पूजा नहीं करता होगा छुप छुप करके, नहीं, सभी हरि की पूजा करेंगे तो गति वही मिलेगी, इसलिए यमराज के दर्शन नहीं होंगे भक्तों का। और फिर भी यदि हम इस जन्म को सिद्ध नहीं कर पाए, इस जन्म में अपनी भक्ति को पूरा नहीं कर पाए तो क्या होगा, प्राप्य पुण्य कृतम लोकान उषित्व शाश्वती समह शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टा भी जाए थे। हाँ, जब कोई अपनी भक्ति पूरी नहीं कर पाता है किसी भी कारणवश, भाई भजन कर रहा था किंतु सपने में एक बार उरुषी दिखाई दी, तो ओ गोलोक जाएंगे किंतु इंद्रलोक भी जाएंगे एक बार हो सकता है। उरुषी जानते हैं ना आप, सबसे सुंदर अप्सरा है इंद्रलोक का, क्योंकि हरि कांच है ना वो, उरुष निकले हुए उर्वशी। यदि ऐसे कुछ हो गया है ना, और भक्ति के अंदर अंदर है, बाहर से भक्ति कर रहे हैं कि अंदर इच्छा है कि भाई उर्वशी के दर्शन हुए थे सपनों में, एक बार उनसे मिल तो लो, उनका स्वर कैसे होगा, गति कैसे होगी, अर्जुन से भी मिली होगी, हाँ हाँ कैसे। तो यह हो सकता है कि आप इस जन्म के पूरा होने पर गोलोक तुरंत न जा सके, तब प्राप्य पुण्य कृताम लोकान, वहां जाएंगे जहां पर वो लोक है जहां पर पुण्यवान लोग जाते हैं। उषित्वा शाश्वती समाह, यहां पर शाश्वती का तात्पर्य यह नहीं कि वो आप सदैव रह सकते, क्योंकि इंद्रलोक भी शाश्वत नहीं है, कभी वो नष्ट होगा तो वहां से लौटना पड़ेगा। और जो लौट करके आएंगे पृथ्वी पर, क्षीण पुण्य मृत्युलोकम विशंति तब शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टा भी जायते, तो आपको दोबारा एक अवसर मिलेगा हरि देंगे कि आप ब्राह्मणों के परिवार में उच्च कुल में जन्म लेंगे शुचिनाम, और श्रीमता माने धनी बनिया बिरला टाटा, ऐसे परिवार में आप जन्म ले सकते हैं। विशेष करके बिरला बहुत पुण्यवाणी है ना, जितने धर्मशाला है ज्यादातर बिरला का ही है, तो आप ऐसे परिवार में जन्म लेंगे और दोबारा आपको अवसर मिलेगा कि आप अपनी भक्ति इस बार पूरा करो, क्योंकि हरि जब एक बार हाथ पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं है, है ना। एक बार आप आ गए इस नाव में तो गोलोक की गति तो होगा ही, किसी को देर से हो तो किसी को तुरंत हो। ये सब कहने के बावजूद भी श्रील प्रभुपाद जी यहां पर कह दिए ना कि भक्तों के ऊपर लागू नहीं होता ये सब नियम, फिर भी एक पत्र में, ये इंग्लिश में है तो उसका अनुवाद करता हूं, कहते हैं कि ये जो पिंडदान आदि कर्म है ये भक्तों के लिए भी आवश्यक है। हालांकि दो प्रकार के यहां विधियां हैं, एक है कर्मकांड विधि और एक है भक्तियों की विधि। तो प्रभुपाद जी रेवती नंदन को 14 नवंबर 1973 में कहते हैं, आप जो उस एक्सीडेंट के बारे में, कार एक्सीडेंट के बारे में कह रहे थे, तो मैं इस पर यह कहूंगा तुम एक संवेदना सभा बुलाओ। संवेदना सभा समझते हैं, कॉन्डोलेंस मीटिंग, उस राघवदास ब्रह्मचारी उसके लिए और उनकी आत्मा के लिए तुम श्री कृष्ण से प्रार्थना करो कि उसको दोबारा एक अच्छा अवसर प्रदान हो कि वो कृष्ण भवनामृत में आगे बढ़ सके। ये निश्चय है कि भगवान उसको दोबारा एक ऐसे जन्म देगा जिससे वो अपने कृष्ण भावना की कार्यकलापों को दोबारा फिर से आरंभ कर सके, इसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु हमें चाहिए कि एक संवेदना सभा बुला करके उस वैष्णव से जुदा होने के कारण हमें उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। क्या तुम्हें पता है कि उसके साथ साथ प्रसाद का वितरण भी करना चाहिए? 3 दिन के पश्चात, उस वैष्णव के जाने के पश्चात, हमें एक सभा बुलानी चाहिए और उसमें उस मृत आत्मा को और सबको प्रसाद खिलाना चाहिए, प्रसाद का वितरण करना चाहिए, यह परंपरा है। तो प्रभु जी यहां पर बताते हैं कि हमारे इस्कॉन में ऐसा होता है कि हालांकि हम लोग पिंडदान वैसे नहीं करते जैसे गया में होता है या तो यहां जमुना पे होती है, वैसे तो नहीं करते, किंतु सिस्टम यह है कि हम लोग भगवान के महाप्रसाद उस मृत आत्मा को, उस प्रेत आत्मा को हम लोग चढ़ाते हैं। यहां पर जब मैं मायापुर में था तो हम लोग गुरुकुल में गोपाल भट्ट गोस्वामी के सत्क्रिय सार दीपिका पढ़ते थे। सत्क्रिय सार दीपिका हमारी पद्धति है जिससे ये पता चलता है कि वैष्णव के लिए कौन सी क्रिया कार्य करना चाहिए, दहन क्रिया आदि आदि, जब किसी का प्राण छूटता है तो क्या करना चाहिए। सत्क्रिय सार दीपिका का तात्पर्य यह है कि जो कर्मकांड के जो विधियां हैं उसका आध्यात्मिक सार क्या है, उसको लेकर चलना चाहिए। तो सत्क्रिय सार दीपिका के अनुसार प्रभा जी ऐसे बताए हैं कि हम लोगों को महाप्रसाद चढ़ाना चाहिए। कुछ वैष्णव परंपराओं में यह प्रथा चली आई कि वो पूरा कर्मकांड श्राद्धी करते हैं, और इस विषय में आप यदि रामायण पढ़ते हैं तो दशरथ महाराज, ये प्रतिध्वनि क्यों हो रहा है, अभी तो हो नहीं रहा था। तो जैसे कि रामायण में दशरथ महाराज का जब प्राण छूटता है तब वहां पर सारे पिंडदान श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। पांडु महाराज के बारे में भी ऐसा बताया गया है और पितामह के बारे में, भीष्म पितामह के बारे में भी ऐसा कहा गया, जब वो प्रस्थान किए तो सारे श्राद्ध क्रियाकर्म किए गए थे। यहां पर चित्रकेतु भी स्वयं अभी अपने पुत्र का दहन क्रिया श्राद्ध कर्म करेंगे। आगे के अध्याय में 16 में श्लोक नंबर 13 और 16 में बताई गई कि उन्होंने श्राद्ध पिंडदान आदि सब किया अपने बच्चे के लिए। तो हमारे वैष्णव के लिए जो क्रिया है वो थोड़ा सरलता है, उसमें सरलता है ज्यादा, कि हम लोग जब कोई वैष्णव हमसे बिछड़ जाता है तो हम लोग ब्रह्म संहिता का पाठ करते हैं, गीता का प्रवचन करते हैं और उस मृत शरीर पर गंगाजल का छिड़कावा करते हैं। फिर उनको एक महाप्रसाद माला चढ़ाया जाता है, तुलसी रखी जाती है, घी और तिलक चढ़ाया जाता है, उनके साथ धूप दीप और फूल चढ़ाया जाता है और ये धीमी नाद में कीर्तन करते करते अब एक से एक सारे भक्त आएंगे आगे और उनसे अंतिम विदा लेंगे और अंतिम कुछ विदाई के शब्द बोलेंगे उनसे। और तब जब शरीर को हम जलाने लगते हैं तो उसमें कोई कुछ मंत्र है जो बोले जाते हैं, ये ईशोपनिषद के मंत्र है, ओम वायुर अनिल अमृतमथेदम भस्मांतागम शरीराम, ओम क्रतो स्मर कृतज्ञम स्मरा क्रतो स्मर कृतज्ञम स्मरा अग्ने नय सुपथाराये अश्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयुध्यस्म जुहुराण मे नो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेमा। ये ईशोपनिषद के दो श्लोक हैं और ये हमें बताते हैं कि स्मृतात्मा के लिए, हे प्रभु हमने जो भी भक्ति किया है आपको समर्पण करके अब जब हम इस यात्रा में जा रहे हैं तो हमें सदगति प्राप्त कराना। वायुर अनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम, इस शरीर का वायु वायु से मिल जाए, इस शरीर की मिट्टी जो भस्म होगा फिर मिट्टी में मिल जाए। क्रतो स्मर कृतज्ञम स्मरा, क्रतो स्मर कृतज्ञम स्मरा, कि हे प्रभु हमने जो सत्कर्म किया उसका स्मरण करो, हमें उच्च गति दो। फिर एक और मंत्र कहा जाता है, ओम क्रव्याद अग्नि नमस्तुभ्यम, क्रव्याद अग्नि वो है जो कि शरीर जलाता है। फिर शांति पाठ किया जाता है, ओम ध्यो शांति आदि। चौथे दिन पर ये भस्म लेकर के जमुना गंगा में या कोई पवित्र नदी में उसका विसर्जन किया जाता है। फिर उसके बाद ईशोपनिषद का जाप होता है और तब हमें चाहिए कि भगवान कृष्ण को पिंड चढ़ाए और भोग लगाए। जब वो महाप्रसाद बन जाए, जैसे भगवान जब खा रहे तो उसके समय हमें ब्रह्म संहिता का जाप करना चाहिए और उस महाप्रसाद और पिंड प्रसाद को उस प्रेत आत्मा को जो चले गए हैं उसके फोटो पर, उसके छवि के सामने चढ़ाया जाना चाहिए। और उसके बाद सबको प्रसाद मिलता है, कीर्तन और प्रवचन दिया जाता है। तो ये हमारे वैष्णव विधान से ऐसे प्रेत क्रिया किया जाता है। विदेशों में भी यही स्थिति है, ऐसे हम लोग करते हैं, भारत में भी यही है। किंतु गरुड़ पुराण में, अभी थोड़ी समय बाकी है, तो गरुड़ पुराण में जो कि पूरे विश्व में जितने भी हिंदू समाज है उसी को उसी के अनुसार पालन करते हैं, उसमें कुछ और चीजें बताई गई हैं। पूरा मैं तो यहां नहीं कह पाऊंगा, वो सब कर्मकांड विधि है, किंतु आपके जानकारी के लिए ये अच्छा रहेगा। क्योंकि जैसे हमने पहले बताया, कुछ जो परंपरागत वैष्णव है उसमें सुदृढ़ रहते हैं, वो प्रेत कांड ये गरुड़ पुराण का पालन भी करते हैं। क्योंकि अब आप ये तो नहीं देख सकेंगे कि उसकी गति क्या हुई है, ये तो गुरु ही देख सकता है। यदि गुरु ने देख लिया भाई हाँ वैकुंठ से विमान आया या गोलोक से कन्हैया आए हैं, तो इसके लिए कोई श्राद्ध कर्म की आवश्यकता नहीं है, है ना। किंतु ज्यादातर स्थिति क्या होती है, आप तो वैष्णव हो किंतु आपके परिवार वाले वैष्णव है क्या? यदि नहीं है तो उनके ऊपर वैष्णव विधि लागू नहीं होगा, काम नहीं करेगा। हमने अनुभव किया, हमने पुरोहिती किया है, मायापुर के निकलने के बाद हमने पुरोहिती की है, तो उसमें कई कई बार हमने देखा कि वैष्णव विधि कर्मियों पर लागू नहीं होता है, उनके लिए कर्मकांड ही करना पड़ता है। क्योंकि अभी हरि नाम का हरि नाम तो किया ही नहीं है ना, दीक्षा कभी लिया ही नहीं, तो उनके उनका संबंध तो हरि से बना ही नहीं, वो बनाना ही नहीं चाहते, वो कहीं और जाना चाहते हैं, तो उनके ऊपर ये कर्मकांड विधि ही लागू होता है। तो सूक्ष्म रूप में वो भी बता देते हैं आपको कि प्रेत क्रिया के अनुसार गरुड़ पुराण में पहले से जो जिस दिन प्राण छूटता है उसे लेकर 10 दिन तक एक पिंड पिंड होता है चावल दूध में पकाया हुआ, उसमें काला तिल थोड़ा मधु और घी भी मिलाया जाता है और एक गोला बनाया जाता है पिंड इतना बड़ा लगभग। तो प्रतिदिन शरीर छूटने से 10 दिन तक वो चढ़ाया जाता है तर्पण के साथ। कहते जब कोई मर जाता है मृत आत्मा बहुत प्यासे होते हैं इसलिए उसको तर्पण दिया जाता है। तर्पण जब चढ़ाते तो यह है पितृतीर्थी, इसको ब्रह्म तीर्थ कहते हैं, यह है ऋषि तीर्थ, यह है देवतीर्थ और यह है पितृतीर्थ। तो जल ऐसे गिराया जाता है पितृतीर्थ से। और पुरुषों को चाहिए कि यज्ञोपवीत अभी ऐसे है ऐसे पहन ले। तो जो लोग ऐसे पहनते हैं उपवीत से पता चल जाता है कि भूतों की पूजा कर रहा है। जब उल्टा पहनता है तो प्रेत कौन है, मरा हुआ व्यक्ति कौन है, भूत तो है ही। तो इसलिए प्रेत कांड में प्रेतों की पूजा ऐसी की जाती है उल्टा उपवीत लगा करके। इसके पीछे है हर प्रकार के सूक्ष्म नियम होते हैं। तो 11वां दिन कुछ नहीं होगा उनको शांति मिलेगी। अब 12वां दिन 16 पिंड और तर्पण चढ़ाई जाती है। 16 पिंड कैसे, 12 पिंड उस पितृ के लिए, 3 उनके पूर्वजों के लिए और 1 पिंड ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए चढ़ाया जाता है। साथ साथ एक यज्ञ की जाती है और शास्त्रों का पाठ किया जाता है। 13वां दिन यह माना गया है कि प्रेत एक पितृ बन जाता है और वो चला गया अपने नवधाम को चला गया। उसके पश्चात हमें चाहिए कि प्रति महीना श्राद्ध अर्पण करें और फिर हर 6 महीने पर, फिर हर 12 महीने पर, जिसको सपिंडकरण कहते हैं, और वार्षिक श्राद्ध भी होता है एक उदिष्ट। हमने अपने तीर्थयात्रा में भारत में कई बार देखा है, जैसे कि मैं एक बार चित्तौड़ में गया था, आप कहीं चित्तौड़ गए होंगे तो आप देखना वहां पर कई प्रकार के स्मारक हैं, जहां पर क्या नाम उसका ओवीर पांका जैमल फल फत्ता आदि आदि जहां पर उनका वो धराशायी हुए थे वहां पर स्मारक बना दिए हैं। तो मैं एक बार वहां पर चल रहा था तो देखा कोई आकर पूजा कर रहा है, तो पूछा कि आप पूजा क्यों कर रहे हैं। तो कहा महाराज जी हम पूजा नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ खटपट होता है हमारे परिवार में, हम जैमल के वंशज हैं, हम लोग फत्ता के वंशज हैं, यदि हम लोग यहाँ पर हर साल आकर चढ़ाते नहीं कुछ तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है। तो मैं समझ गया हाँ ये वार्षिक श्राद्ध कर रहा है, आज भी वो लागू होता है, ऐसे हमने देखा अनुभवी बातें हैं। और इसके पीछे रहस्य क्या है, पिंड चढ़ाने का क्या है। कहते हैं गरुड़ पुराण में कि पृथ्वी और यमलोक की दूरी कितना है, 86,000 योजन की दूरी है। और 12 दिन में जब कोई किसी का शरीर छूटता है किसी का शरीर, तो वो 12 दिन में यमलोक एयरपोर्ट पे पहुंचता है। यमलोक एयरपोर्ट मतलब वहां पर पहुंचेगा किंतु अभी कोई रहने का स्थान तो नहीं मिला ना, तो उसको ट्रांजिट बोलेंगे, यमलोक एयरपोर्ट पहुंचता है। फिर वहां से उसको यमपुरी पहुंचने में 1 साल लगता है, और वहां जाते जाते उनको 16 नगर पार करने पड़ते हैं। उन लोगों नगरों का नाम भी बताया गया है, जैसे यामय नगरेंद्र नगर, गंधमादन, शैलग्राम, क्रूरपुर। यमलोक में एक नगर का नाम है क्रूरपुर, नाम से पता चलता है कि बहुत क्रूर कार्य होते हैं। अब वास्तव में शैलपुर में जो पापी होगा उसको पर पत्थर मारा जाएगा, पापियों का जय हो। हम तो सुने के भाई भक्त करोड़ा वही होते, यहाँ पर जय हो रहा है। एक है नाना क्रंदनपुर, वहां पर पहुंचने में कई प्रकार के रोदन आदि आदि होता है। ऐसे साल के अंत में वो यमपुरी पहुंचता है जहां पर यमराज विराजमान है ना। जैसे आप यहां पर एयरपोर्ट से वृंदावन पहुंचने में कई जगह पास होते हैं ना, आप ये क्या बोलते हैं वो होटल आता है, फिर आप समझ जाएंगे है? धीरे धीरे तब वृंदावन आती है। उस समय क्या होता है, जब किसी का प्राण छूटता है तो वो लिंग शरीर में होता है, उसको वायुज शरीर कहा गया है गरुड़ पुराण में। और उस शरीर को अब पिंडों द्वारा ढका जाएगा। जब वो एक पिंड पाएगा तो उस आधे पिंड से उसकी शरीर बनेगी, और 1/4 भाग उसके भरण पोषण के लिए है और 1/4 भाग यमदूतों के लिए है। आपको पता है यमदूत कैसे बनते हैं, यमदूत कोई कैसे बनता है आपको पता है हा? उसके लिए आपको माने कैसे बोलते, नो वेकेशन ऐसे नहीं होता है, जितने चाहो उतने यमदूत बन सकते हैं, बाद में बताएंगे। पहले ये जान लो कि पिंड क्या करता है। पहला पिंड खाने से उस लिंग शरीर पर एक पिंडज शरीर बनता है जिसमें वो भोग कर सकता है, क्योंकि वायु शरीर में प्रेत के लिए ये खाना या तृप्त होना असंभव होता है, इसलिए उसको एक नया देह दिया जाता है। जिसको पिंडज देह कहते हैं। तो पहले पिंड खाने से शरीर मस्तक बनता है, दूसरे से गर्दन और कंधे बनते हैं, तीसरा से हृदय, फिर पीठ, चौथा पांचवा नाभि, छठा से पेट बनता है। अब यास्त्री के बाद कि नाभि बन गया, पेट नहीं है अब, पर ऐसे पुराण में बताया गया है। सातवां में प्रजनन बनते हैं, आठवां में जंघे बनते हैं, और नौवां में ये जो तालू है ऊपर का, यह जहां जीवा लगता है, और पांव बन जाते हैं, और दसवें में उनको भूख लगने लगती है। इसलिए ग्यारहवा बारहवा दिन पर उसको इतने सारे पिंड दिया जाता है ना, बारह, ताकि वो खा पी करके पुष्ट हो जाए। और तेरहवा दिन तब उसकी यात्रा शुरू होती है, यम लोग एयरपोर्ट से यमपुरी तक, और सोलह नगर अब आएंगे वहां पे। यदि उसने पुण्य किया है तो यातना झेलने नहीं पड़ती है, यदि पाप किया है तो क्रूरपुर आएगा, शैलग्राम आएगा, है ना, जहां पर उनको यात्रा सहनी पड़ती है, ऐसे बताया गया है। तो जब पहुंचेगा वो यमपुरी में, तब चित्रगुप्त खाता खोलेगा आपके कर्मों का, क्या क्या किया है, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ये छिपा कर किया है, ये खुलकर किया है, हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, तो अब क्या करना है आपको, तुम बताओ, तुम इस्कॉन के भक्त हो, पहले स्वर्ग जाओगे कि तुरंत नरक। दुर्योधन से ये पूछा गया था, वास्तव में महाभारत में ऐसा वर्णन है कि जब कोई मृत आत्मा जाता है तो दुर्योधन के पास बहुत पाप कर्म था और थोड़ा सा पुण्य भी था, तो उनको लगा पहले भोग करें, इसलिए जब युधिष्ठिर महाराज स्वर्ग में गए तो दुर्योधन को देखा और बहुत परेशान हो गए, कैसे हो सकता है दुर्योधन स्वर्ग में। तो उनको समझाया गया, नहीं, जब कोई मिश्र कर्म करता है पाप और पुण्य, तो उसको ये अवसर दिया जाता है, पहले तुम पाप भुगतोगे या पहले पुण्य भुगतोगे। तो दुर्योधन ऐसा था, पहले पुण्य भुगत ले फिर सदा सदा के लिए नरक में जाओ, है ना, ऐसा होता है। तो मिश्र कर्म होता है तो पूछेगा, अच्छा आप कहाँ गए, भयभीत मत हो, आप नहीं जाएंगे, वो नाम वाला इस्कॉन भक्त होगा, तो बाहर से रूप से इस्कॉन भक्त था किंतु अंदर से कुछ और करता था, वो जाएगा वहां पे। तो वहां पर उनकी खाता देख करके अब निर्णय लिया जाएगा कि उनको कहां जाना है। हाँ, यमदूत कैसे बनते हैं, पांच मिनट बाकी है, जिन व्यायाम करने से नहीं बनते, नहीं, यमदूत ऐसे बनते हैं कि भाई जिनके वंश में पिंडदान करना बंद कर दिया है उनके वंशजों ने, विशेष करके आप इसे सावधान रहना, एक यहां पर मति है भारत में और विदेशों में भी मति बहुत प्रबल है, उसको आर्या समाज कहते हैं, और यहां पर सिखों में भी यही हाल है कि ये लोग पिंडदान बंद कर दिए हैं। तो इनसे क्या होता है, पूर्वजों को इतनी भूख लगती है वो तड़पते हैं, प्यासे होते रहते हैं, और जो कोई बहुत सालों साल तक नहीं खाए तो उसका शरीर कैसे दिखेगा, कुबेर जी जैसा मोटा ताजा नहीं ना, एकदम भूख से संतप्त क्रूर। तब वो उनको देख करके यमराज जी दया मैं होकर के उनको अपने सेवा में ले लेते हैं, तब वो यमदूत बनते हैं। और इसलिए यमदूत इतने उत्साहित होते हैं मृत आत्माओं के पास जाने के लिए, क्योंकि तेरे जैसे लोग के कारण मैं ऐसे बना हूं, आज मैं तुम्हें वापस वो दूंगा, इसलिए यमदूत, उनको इतना उत्साह होता है, चलो पकड़ो उसको। हाँ, जब ऋषि मुनि कह रहे थे प्रवचन में कि ऐसे मत करो, तो तुम ये सब बकवास की बातें हैं, हाँ, अब आई ऊंट पहाड़ के नीचे, हाँ, वैसे होता है वास्तव में, तब वो बनता है, ये यमदूत बनता है। यहां पर भागवत में भी एक अश्विन कृष्ण पक्ष आता है, भागवत में सातवां स्कंद में आप पाएंगे युधिष्ठिर महाराज और नारद के बीच में जो संवाद चला था, उसमें नारद बता दिए कि कब कब श्राद्ध अर्पण करना चाहिए। तो ये कर्मकांड विधि है, और अब देखिए आप किस परिवार में हो। वैसे मैं ये बात सिखों से पूछा हूं, सरदारों से, तो कहा हम कुछ नहीं करते हैं, कुछ समय बात छिप करके, महाराज जी सब करते हैं किंतु कुछ नहीं बताते। उनको विदित होता है ये पीड़ा यातना जो है सहनी पड़ती है। तो वास्तव में यदि हम इन चीजों से बचना चाहें तो अच्छा भजन करना पड़ेगा, त्रिगुण अतीत बनना पड़ेगा, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा बनना पड़ेगा। आगे यहां कर अब नारद जी और अंगिरा ऋषि चित्रकेतु को ऐसे मंत्र देंगे जिससे वो हरि भक्ति में दीक्षित हो जाएंगे, और 7 दिन के अंदर अंदर शंकरशन भगवान के दर्शन पाएंगे, है ना। तो जो दर्शन पा लिया उसको यमलोक पिंडदान आदि करने की आवश्यकता नहीं है, किंतु आप में वो क्षमता नहीं कि 7 दिन में आप हरि को बुला सके, जैसे जैसे बाकी बिहारी को प्रकट करा सके, तो भाई कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। वैसे ऐसे देखना चाहिए। हमने कई बार देखा है पूर्वोति करते समय, कहेगा प्रभु जी वो लड़का जो मरा था ना सपने में आया, पिताजी मुझसे बता रहा है, और कहा कि पता नहीं आप लोगों ने क्या किया पर मुझे कुछ नहीं मिला। मैं कहा आप लोगों ने क्या किया, और माला दिया है, राधा गोपीनाथ को प्रसाद लाकर उसको दिया, सब उसी क्या बोलते उसको कब्र में बक्से में रख करके जला दिया, है ना, किंतु विधि विधान से नहीं किया। एक और भी भयंकर विधि है, उसको पंचक कहते हैं। आप जानते होंगे पंचक किसको कहते हैं, नहीं? 5 ऐसे नक्षत्र होते हैं जिसमें कोई शरीर छूटता है तो 5 परिवार लोगों को भी ले जाएगा, इसलिए ग्रहों की शांति करनी पड़ती है। और मैंने देखा ना केवल हिंदुओं के परिवार में, ना हिंदुओं के परिवार में भी होता है। कई बार हमने सुना है आई हैव लॉस्ट माई फैमिली विद इन अ फ्यू मंथ, सो मेनी हैव लेफ्ट। उनको पता ही नहीं कारण क्या है, पर हमारे यहां पर यह ज्ञान है कि ग्रह शांति करनी पड़ती है। इसलिए अब देखो आप भक्ति नहीं करेंगे तो क्या क्या करना पड़ेगा, इसलिए भक्ति अच्छी तरह से करो, मन लगा करके करो, नहीं तो क्रूरपुर शैल ग्रह। समय हो गया है, कोई प्रश्न होता पूछ सकते हैं। बच्चे का पूर्व जन्म का इतिहास है, देखो जो भी जीव यहां पर आता है पूर्व जन्म का इतिहास तो होता ही है उनका। मैंने आप भागवत के बारे में पूछ रहे हैं या कोई व्यक्ति? हाँ अच्छा, तो हाँ वो ही प्रश्न आया ना कि ये वृत्रासुर ये असुर था। हाँ ना, उसका इतिहास यहां तक मुझे ठीक से याद नहीं है, विदित नहीं है क्या उसका पिछले जन्म का इतिहास क्या था, पर बात तो यही है ही कि चित्रकेतु को कर्म के आधार पर संतान होने का कोई भाग्य नहीं था, तो अपने कर्म से अपने शक्ति संगीरा ऋषि ने होम करके उनको संतान दिया था। कहीं पुराण में शायद होगा, मैं इसका कोई रिसर्च विशेष नहीं किया। अच्छा अच्छा, हो सकता है, ठीक है, उसका कोई इतिहास होगा। किसी को भी देते हैं यहाँ पे तो बता सकता है, आपको भी चांस मिल जाएगा। तभी मैं बताया ना, प्रभा जी ने कहा था कि उसकी श्राद्ध की जाए, किंतु वैष्णव विधि से। आप जो कह रहे हो भक्त है ना, तो 3 दिन के बाद एक संवेदना सभा लगेगी, उसमें हम लोग पिंड चढ़ा करके कृष्ण को और भोग लगा करके उस प्रसाद को चढ़ाएंगे उस भक्त के नाम से। वो ये हम लोग ये इस्कॉन में चलता है, वो पूरा जो कर्मकांड जो है, जो गरुड़ पुराण और आदि भी और भी शास्त्र हैं, कुछ धर्म शास्त्र हैं जिनके आधार पर पंडित ये काम करते हैं पंडित, तो वो करना आवश्यक नहीं है। किंतु जब भी आप जब भी ऐसा कोई अवसर आन पड़े, सबसे अच्छा रहेगा उसके गुरु से पहले सलाह ले लें कि आप उनके गुरु हो, ये बताओ कि इनके लिए कर्म करना चाहिए कि नहीं। और कोई प्रश्न? क्या? हाँ, ये उसका नाम है सत्क्रिया सार दीपिका दीपिका। इसका लेखक है गोपाल भट्ट गोस्वामी। मुझे पता नहीं कि इसको अब छाप रहा है कि नहीं। जब मैं मायापुर में था तो हम लोगों ने उनसे शिक्षा ली थी, किंतु जैसे होता जब मांग नहीं होती तो छपना भी बंद हो जाता है। आप शायद थोड़ा गौड़िया मठ ट्राई कर लो कि वहां पर आपको मूल मिल सके, बंगाली में होगा या तो बंगाली में हो गया हो सकता है। अब कहां मिलेगा ये मैं बता नहीं सकता, मेरे पास जो इंग्लिश एडिशन था उसका मैं प्रयोग करता हूँ, किंतु वो डिजिटल है, वो फोटो से मैं रख लेता हूँ ना, वो सत्क्रिया सार डीपी का। किंतु जैसे अब देखो आप, हाँ ये आप हेड पुजारी से पूछ लो कि वो करते हैं ये सब क्रियाएं, है ना, क्या नाम उनका, मुकुंद दत्त प्रभु, तो उनके पास शायद एक कॉपी होगा, मुकुंद दत्त मुकुंद दास, ठीक है। अच्छा, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि।